ओम शांति। आदरणीय रामनाथ भाई जी का हम बहुत बहुत करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय रामनाथ भाई जी, बचपन से ही जिन्हें आध्यात्म में रुचि रही और हमेशा आत्म साक्षात्कार का संकल्प रहता था, आपको 1972 में ज्ञान मिला और 1978 में आप बाबा के इस बेहद ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित हुए। तब से ही आप अनवरत रूप से ज्ञान योग की तपस्या में मगन रहते हैं। हमने देखा है रामनाथ भाई को कि विचार सागर मंथन में इनकी गहरी रुचि रही है और आप देश विदेश में जाकर के, भारत के भी अनेक स्थानों पर जाकर योग तपस्या भट्टी का कार्यक्रम कराते रहते हैं। आप धार्मिक विंग के मुख्यालय संयोजक हैं, साथ ही आप धार्मिक विंग के अनेक कार्यक्रमों में अनेक स्थानों पर जाकर बाबा का ईश्वरीय संदेश देते हैं। अनेक महामंडलेश्वरों को भी आपने ईश्वरीय संदेश दिया और कई स्थानों पर जगत गुरुओं ने भी आपको सम्मानित किया है। तो बहुत ही गहन चिंतन का विषय लेकर आज हमारे सामने है और वो विषय है नॉलेजफुल और नॉलेजेबल बनने की विधि। हम ज्ञान में तो भरपूर है पर ज्ञान स्वरूप कैसे बन जाए, इस विषय पर आदरणीय रामनाथ भाई जी सबका क्लास कराएंगे।
ओम शांति, ओम शांति। देखो बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे हैं, एक नॉलेजफुल है, तो ज्ञान को कैसे आचरण में लाते हैं, और एक ज्ञान सुनते हैं, नोट भी करते हैं लेकिन आचरण में नहीं लाते हैं। ऐसे आप देखेंगे बाबा के पास चार प्रकार के बच्चे हैं, तो चारों को बाबा रोज ज्ञान सुनाता है अलग अलग प्रकार से, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कहा। तो उसके लिए चार प्रकार के बच्चे चाहिए, तो चारों प्रकार के बच्चों को सामने रखते हुए बाबा ज्ञान सुनाता है, क्योंकि हर एक जैसे नहीं बन सकते हैं। जैसे एक हाथ है, अंगुली पांचों है, एक जैसे नहीं है, एक मोटी है, एक बारीक है, एक लंबी है। तो ऐसे बाबा के बच्चों में भी सभी एक जैसे हो नहीं। तो उसके एक उदाहरण है, एग्जाम्पल देखो, एक भाई है, बच्चा है, रोज मुरली सुनता है, नोट भी करता है, और यहां से बाहर गया, अपने कर्मों में गया, तो जो उसके पुराने संस्कार से वही काम करते हैं, और यहां जब मुरली सुनता है, लिखता भी है, उस समय संकल्प करता है, जैसे बाबा ने कहा गुस्सा नहीं करना चाहिए, हाँ बाबा आज महसूस भी करता है, वो यहां तक ही उस वातावरण में गया, वो डायरी फिर कल खोलेंगे। तो वो भी बच्चे चाहिए, ऐसे भी है। आप अपने आप को देखना, हम किस क्वालिटी के बच्चे हैं। दूसरा है, मुरली सुनते हैं, लिखते भी है, और उसी समय संकल्प भी करते हैं कि आज से मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, आसुरी संस्कार है। एक महीना दो महीना तक याद रखता है, उसको बाबा कहते हैं मर्ज और एमर्ज, दो शब्द यूज करता है। जो ज्ञान एमर्ज है, जागृत है, और थोड़े समय के बाद मर्ज हो जाता है, वो भी चाहिए बच्चे। तीसरे बच्चे हैं जो मुरली सुनते हैं, लिखते भी है, वो कहते हैं सुनते सुनते ही बाबा ड्रामा फिक्स है ना, हूबहू रिपीट है, हमारे अंदर जो संस्कार है वो संस्कार फिक्स है, ड्रामा है, हूबहू रिपीट होगा। तो वहां ही बस, उसने वहां ही अपने आप को समझाएगा, कोई पुरुषार्थ नहीं, कुछ करना चाहिए नहीं, ड्रामा है, फिक्स है सब कुछ, वो भी बाबा के बच्चे हैं और बाबा को वो भी चाहिए। चौथा एक बच्चा है तो वो मुरली सुनता है, लिखता है और उसी समय दृढ़ संकल्प करता है कि ये क्रोध आज ही मिटाना चाहिए। ये हमारे संस्कार नहीं, हमारे देवी संस्कार है। तो ये महसूस करके छोड़ता नहीं है, कहते सवेरे तो हो गया, मुरली क्लास के बाद सेवा भी करना है, शाम को योग में बैठता है। जो बाबा ने विधि बताया है कि बच्चे आत्मा के अंदर संस्कार है, तो आत्मा समझ के बैठो और परमपिता शिव परमात्मा को याद करो। वो अग्नि है, ज्वाला है। तो कोई भी ऐसे संस्कार बहुत जन्मों के बीज रूप में है संस्कार में, तो वो अग्नि में डालो तो भस्म हो जाता है, वो दोबारा उगेंगे नहीं। जिसको कहा योग अयोग, ये हमारा अग्नि है। तो ये सुनता है तो शाम को बैठता है। तो आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करना है, नहीं तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी राजयोग सिखाया है, पतंजलि के अंदर भी राजयोग है। तो ब्रह्मा कुमारी का राजयोग क्या है? शिव बाबा जो परमधाम से आता है और ये राजयोग सिखाता, कहा आज भी ये कोई भी सिखा नहीं सकता है सिवाय बाप के। वो कलप के अंत में स्वयं आता है, वो निराकार है, साकार तन में आकर बच्चों को ये पढ़ाता है। तब का पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे राजा, सिर्फ पढ़ेंगे सुनेंगे तो नहीं। आज हमारे जीवन में ये जो मोबाइल का एक माया ने एक चमत ये आकर्षण डाला है, माया का पाम कहा कि बच्चों की बुद्धि कैसे को भ्रष्ट किया जाए, कैसे बिजी किया जाए। जो ये यो राम का न बने, वो ज्ञान उनके अंदर धारण न हो, तो ये एक चतुराई है माया के लिए। तो उस कारण आज हमारे हाथ में मोबाइल है, हाँ एक सेकंड भी कोई खाली नहीं रहता है। थोड़ा भी समय में रास्ते पर चलते हुए भी देख लो मोबाइल चाहिए, तो ज्ञान कहां ठहरेगा, कैसे याद आएगा। तब बाबा कहता है कोटों में कोई मेरे बच्चे हैं जो मेरे श्रीमत पर चलते हैं, और वो थोड़े से बच्चे हैं, बहुत नहीं, तो वो थोड़े बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। तो इसलिए यहां आप कहेंगे मुझे बहुत पुरुषार्थ करना है, चार्ट लिखना है, चेकिंग किया, बहुत कुछ किया, ये छोड़ना महसूस भी करते हो मुरली सुनते हुए, ऐसा कि नहीं 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 करते, ऐसे नहीं, रियलाइज भी करते हो। इसलिए कहा, इंग्लिश में कहते हैं कि अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज, महसूस करता है उसके बाद भी और कुछ करना है जो परिवर्तन करने के लिए। तो महसूस करने से परिवर्तन नहीं होता है, हम चार्ट लिखते हैं, हाँ आज मुझे क्रोध आया, आज मैंने कोई किसी को दुख दिया, नोट करते हैं, लेकिन वो नहीं होना चाहिए दोबारा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके बाद पुरुषार्थ शुरू होता है। दवाई डॉक्टर से लेके आए, लेके रखा, रखने से नहीं होगा। दवाई लेने के बाद लेके लाके रखा, उसको जिस विधि से उसने बोला, ये खाली पेट में लेना है, ये खाने के बाद लेना है, ये सवेरे लेना है, ये शाम को लेना है, और ये 5 दिन तक लेना है, ये विधि को प्रकार अनुसार अगर इस दवाई को लेते हो तो हमारी बीमारी ठीक होते हुए दिखाई देता है। सिर्फ हमने डॉक्टर को बताया, दवा ला के रखी, मेरे पास दवा है, इससे संतुष्ट नहीं है, बीमारी है महसूस किया, दवाई भी लेके आए, उसके बाद पुरुषार्थ शुरू होता है। हम बाहर से बहुत दौड़ दौड़ के आए, मधुबन जाना है, पुरुषार्थ करना है, तपस्या करना है, अपने पुराने संस्कार महसूस करते हो, ऐसे कि नहीं नहीं करते हो, लेकिन उसको परिवर्तन करना है। तो यहां आने के बाद संगठन है, बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं। कोई किधर घूमने गया, कोई और किधर गया, कोई और कुछ बात आई, आप देख लो साक्षी होकर सवेरे से अब तक किसी ने भी कल बाबा के अव्यक्त मुरली सुनी, उस बाबा मिलन में आए हैं, मुरली सुनी, नोट भी किया, किसी ने किसी को भी उसमें बाबा ने क्या कहा वो चिंतन किया, औरों को समझाया सुनाया, नहीं सुना बस फिनिश। तो ये भक्ति मार्ग के संस्कार है, नहीं तो भारत में क्या नहीं है, रामायण है, महाभारत है, वेद है, शास्त्र है, कितने हैं, रोज कितने कथाएं चलती है, रोज कितने सत्संग चलते हैं, और इस सत्संग में और उस सत्संग में अंतर है। तो ये सत्य है, सत्य बाप कौन है वो, सत्यम हम कहते भगवान परमात्मा कौन है वो, उसका भी नाम है सत्यम शिवम सुंदरम का, सत्य है, निराकार है, अविनाशी है, जनन मरण में नहीं आता है, अभोक्ता है, तो भी कलप में अंतिम समय पर थोड़े समय के लिए, सारे कलप के हिसाब से थोड़े समय के लिए आता है, बच्चों को ये रोशनी देता है, ये संजीवनी बूटी देता है। ये बेहोश हो जाते हम इस संसार मेले में, तो होश में लाने के लिए संजीवनी बूटी है, ये अस्त्र और शस्त्र है, यही शक्ति है जो हमारे पुराने संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं ना, मिनट तो उसको मैं कह ना उधर, तो परिवर्तन कर सकते हो सिर्फ सुनने से नहीं। अगर आप मुरली सुनी तो करो, चालू है अनाउंसमेंट, तो इसके कारण ज्ञान हम सुनने से नहीं, सुन रहे, एक नियम बन गया। भक्ति मार्ग में भी रामायण सुना, महाभारत सुना, वेद सुना, क्या क्या पढ़ते हैं टीवी में मोबाइल में, ऐसे के नहीं नहीं सुनते, समय है, लेकिन उसको आचरण में लाने की एक विधि है, तब ये अस्त्र शस्त्र बन जाता है, तब ये संजीवनी बूटी बन जाती है, तब ये ज्ञान एक अग्नि है पाप को भस्म करता है, तब एक गंगा जल है तो ये पाप को धोता है। तो उसको धारण करने की विधि चाहिए। हमने अपने जीवन में देखा, हम भी रोज मुरली सुनते हैं, नोट करते हैं, एक मुरली के पॉइंट लेते हैं, दो भी नहीं, क्यों, भगवान के एक बूंद के प्यासे हैं, दो बूंद नहीं चाहिए, वो रोज आके देता है, नए नए पॉइंट देता है। तो रोज आज के मुरली में जो नया क्या कहा, जो कभी नहीं सुनाया, तो उस पॉइंट को नोट करो, लिखना आवश्यक है, और सदा नहीं, कम से कम 10-15 दिन, फिर आदत बन जाती है। तो आदत डालने के लिए, अपना जीवन आदत से हैबिट से चलता है, तो 10-15 दिन आदत डालो, मुझे आज के मुरली से नहीं, मेरे मोबाइल में है, मोबाइल लेके आप हर जगह नहीं जाएंगे, जाते समय लेके नहीं जाएंगे, तो कर्म करना है, शरीर दिया तो शरीर के हाथ के द्वारा एक मुरली के पॉइंट लिखना आवश्यक है, ये कर्म है। फिर लिखने के बाद ऐसे नहीं लिख के रखा, डायरी भर जाती है, तो सवेरे दिन में शाम को रात तक वो मुरली के पॉइंट अपने आप को पढ़ाओ, सवेरे दिन में शाम को, नहीं तो कर्म क्षेत्र पर हम ऐसे कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, कर्मों में इतना लीन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत जन्मों का संस्कार है ये, हाँ वो होता है, नहीं ऐसा नहीं, नहीं होना चाहिए, संभव नहीं है, तो उसका निवारण है, हम कर्मों में, व्यवसाय में, बिजनेस में, परिवार में, कितना भी व्यस्त हो, होते हुए जैसे बीच में पानी पीते हैं ना, कि नहीं पीते हो, सवेरे पिया, सारे दिन में पानी नहीं पिया, ऐसा तो नहीं होता है। तो जो सब कुछ कार्य कर रहे हैं, हम कर्म भी कर रहे हैं, कोई चीज छोड़ना नहीं, आप कहेंगे कर्म छोड़ो, बिजनेस छोड़ो, संसार छोड़ो, नहीं, सब कुछ करते रहो उसके साथ, एक एक दो दो घंटे में, तीन तीन घंटे में नहीं हो सकता है, वो भी बहुत व्यस्त है, कोई अर्जा नहीं। खाना तो खाते हो कि वो भी नहीं खाते हो? और भगवान ने हरेक को, शिव बाबा ने दो हाथ दिया है, ऐसा नहीं कोई किसी को एक ही हाथ है, तो दो हाथ से कहते हैं हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड हो, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर खाना खिलाते हो, दिन में आया, नाश्ते का समय आया, ना खाना खिलाते हो, एक हाथ से इस शरीर को खिलाओ, एक हाथ खाली है, लिख करके अपने पास रखा है, निकाल के अपने आप को पढ़ाओ, कम से कम तीन दफा सवेरे, दिन में, शाम को। हर एक व्यक्ति इस शरीर का ध्यान देते हो, कितना भी व्यस्त हो, उसी समय, एक्स्ट्रा समय नहीं चाहिए, मेरे पास समय नहीं है, बहुत बिजी है, ओके, और भी बिजी रहो, छोड़ना नहीं कुछ, वो करते हुए भी, खाना खाते हुए भी बाबा को याद करो। कहते हैं नहीं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे बाबा को याद भी, जो बाबा ने आज क्या कहा था लिख के रखा है, पढ़ो, खाना खा लो, कम से कम इतना हम तीन दफा करते अपने आप को पढ़ाते हैं। और नहीं है, रात को सोने जाते हो, खटिया पर जाने के बाद भी याद करो कि आज सवेरे मुझे बाबा ने क्या होमवर्क दिया था, क्या कहा था। उस समय अगर आपको याद आया आज बाबा ने ये कहा था, ये अपनी परीक्षा अपने आप को लेना पड़ता है। अगर रात को सोते समय आपको आज की सवेरे की मुरली पॉइंट जो लिखा था वो याद आया, तब समझना मेरे अंदर पक्का संस्कार बन गया है। इसको कहते ज्ञान की धारणा हुई है। ज्ञान की धारणा है नहीं है क्या प्रूफ? संस्कार बना या नहीं बना क्या प्रूफ? रात को सोने गए उस समय अपने आप को याद करो, आज बाबा ने क्या कहा, तुरंत याद आया आज बाबा ने ये कहा था, बस इतना ही अंदर है। अगर इतना काम करते हो, चेकिंग करके देखते हो, उसके बाद आप रात को सो गए, देखो ये ज्ञान क्या क्या काम करता है। सो गए, सोने के बाद बाबा ने कहा बुरे स्वप्न आना भी महापाप है। क्या हम स्वप्न को रोक सकते हैं? हां, ऐसी विधि बाबा बताता है। सोने के बाद भी गहरी नींद में गए, बहुत पुराने संस्कार है, काम और क्रोध, लड़ाई झगड़े के संस्कार है, वो आएंगे जरूर। वो जागृत हो गए, स्वप्न आया, बुद्धि आपकी सोती नहीं है, मन सोता है, बुद्धि जागृत है, उसके अंदर ज्ञान है, वो मेरे से कोई भी पाप करना नहीं देगा, बुद्धि तुरंत आपको उठाएंगे। जग गए, स्वप्न खत्म। किसने जगाया? बुद्धि। जिस बुद्धि के अंदर ज्ञान धारण हुआ है, संस्कार बना है, रिकॉर्ड बना हुआ है, क्यों हमने ये तीन काम किया है, तब स्वप्नों में भी आपको बुरे स्वप्न आते ही उसको भी रोकने की विधि इस ज्ञान के अंदर है। फिर बाबा ने कहा किसी अपवित्र व्यक्ति का हाथ का नहीं खाना चाहिए। हम कहते ये नहीं खाता, इनका हाथ का नहीं खाते, बहुत बोलते हैं, कहते हैं अगर कोई कुछ करता है घर में, परिवार में है, देखा भाई ने माताजी गुस्सा करते हुए किससे फोन से बात करते, खाना बन गया, देखा आप नहीं खाएंगे, होटल में जाके खाएंगे, तब बाबा ने व्यवस्था बताया। अगर कहीं भी ऐसा परिस्थिति हो, पता चला आपको ये खाना स्वच्छ नहीं है, तो बाबा ने तुरंत आपको याद आएगा कि मुरली सुनी है, अगर ऐसे एक एक बूंद धारण किया है, जब भी खाना आया, कुछ भी आया, तुरंत बाबा ने कहा मुझे याद करो, मैं पवित्रता का सागर हूं, पतित पावन हूं, और दृष्टि देकर बाबा को याद करते खाओ, व्यवस्था बताया है। कारण बहुत कुछ है भाई जी, शादी पर जाना पड़ता है, यहां जहां सब कुछ है, कुछ छोड़ो नहीं कहा, लेकिन क्या करो कहा वो भूल जाते हैं हम। संसार में ये ऐसा है, वो ऐसा है, बहुत सारे प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्नों का जवाब संसार में रहते हुए, ग्रस्त में रहते हुए कैसे चलना चाहिए, ये ग्रस्त पवित्र ग्रस्त धर्म है, संन्यास नहीं बना बनो कहा, ये छोड़ो ये छोड़ो ये नहीं कहा, ये करो। संसार में बहुत प्रकार के दुविधाएं है, समस्याएं है, व्यवस्था ऐसी बनी हुई है, तो भी तो बाबा ने हर एक की चीज देखा। बाबा कहता शादी में भी जाओ, नहीं जाओ ऐसा नहीं कहा, ये नहीं करो ऐसा नहीं कहा, क्या करो वहां जाकर। अगर किसी प्रकार खाना आया तो आप बाबा को याद करके खाओ, हर चीज की व्यवस्था दे। ये कौन कर सकता है? जिसके बुद्धि में ज्ञान है। कौन ये प्रश्न पूछता है? जो रोज मुरली सुनता है, बुद्धि में ज्ञान नहीं गया, उसके मन में ये उलझन है, वो कंफ्यूज हो जाता है, क्या करो, समस्याएं बताता है, बोले में आता है, मुझे ये बंधन है, मुझे ये बंधन है। कोई बंधन किसी को कोई बांध के नहीं रखा, इतनी स्वतंत्रता है उसको है जिसके बुद्धि में ज्ञान की धारणा है। आप कहेंगे ज्ञान मैंने सारी मुरली चाहिए, नहीं, एक बूंद। 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट नए नए अगर आपने एक एक लेकर किया, भरा अंदर, तो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान नॉलेजफुल है, भरा हुआ है। और जब भी परिस्थिति आती है संसार में, हर एक के सामने आता है, तुरंत बुद्धि कहती है, जागृत है, ये नहीं खाना है, ये नहीं देखना है। मोबाइल में हर एक के पास है, आपको मैं को मोबाइल नहीं देखूं तो आज के संसार में मोबाइल मना हमारा श्वास है, श्वास नहीं है मनुष्य नहीं है, खत्म हो गया है वो। तो आपको को मोबाइल छोड़ दो, संभव नहीं है। तो उस मोबाइल को यूज करने का तरीका भी चाहिए। तब कहा अगर बुद्धि में ज्ञान है तो मोबाइल में कोई गलत मैसेज गलत चीज आई, आप उसको देखते नहीं हो, तुरंत मिटाते हो। कौन मिटाता है? ये बुद्धि। कौन सी बुद्धि? उसका नाम है दिव्य बुद्धि, जिसके अंदर ज्ञान की धारणा है। कौन सा ज्ञान? सर्वशक्तिवान जो ज्ञान का सागर है, वो ज्ञान, उसका एक बूंद अगर इस प्रकार से याद रखते हो, वो बुद्धि हमसे कोई भी इस संगम पर पाप करना नहीं देगा, तुरंत रोकेगा। जैसे अगर मां के साथ कोई बच्चा है, मां बच्चा चंचल है, लेकिन मां उसको संभालती है, मारती नहीं है, उससे कोई गलत काम करना नहीं देती है। अगर जिनके मां बाप नहीं है तो कहता निधन के है, कौन है इनको, कौन रोकेगा। तो यहां भी भगवान मां बाप के, शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप दादा है, पढ़ाता है, सिखाता है, समझाता है। बाबा ने कल मुरली में कहा भी, बाप मदद भी करता है लेकिन हिम्मत रखो कि मुझे कुछ भी आता है, परिस्थिति आती है, नहीं ऐसा नहीं, हर एक के सामने कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनके सामने कोई भी परिस्थिति नहीं है। उसको हमने एक टाइटल लगाया कि हमारे मुझे बंधन है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। कौन, किसने बांध के रखा? आप स्वतंत्र आत्मा हो, वो जिनके बुद्धि में ज्ञान का एक बूंद याद है। ये संजीवनी बूटी है, ये बार बार सुंगा, सवेरे दिन में सुंगाते हो, अपने को याद देते हो, करते हो तो होश में रहता है। भले 2 घंटा कम से कम हमने कहा, खाना खाने बैठते हो तभी उसका चिंतन मंथन करते हो, और ऊंच पद वो भी नहीं करो, कम से कम साधारण भी बनना चाहते हो सिर्फ याद दे दो। अगर उसका चिंतन मंथन करते हो, नहीं तो मुरली सुनी, किसी को मुरली के पॉइंट सुने आपने, आज बाबा ने ये कहा उसने भी सुना है, हमने सिर्फ पॉइंट दिया, उससे कोई कमाई नहीं। अगर उसका चिंतन मंथन करो और उसको एक्सप्लेन करो, ये आज बाबा ने क्या कहा, ये कैसे करना चाहिए, ये करने से क्या होता है, फिर वो भी अपना विचार बताता है। तो ऐसे अगर आप ज्ञान के लेन देन करते हो तो बुद्धि दिव्य होती है, स्वच्छ होती है, अपने आप नहीं होती है। मुरली सुनी, लिख दिया हमने, तो बुद्धि स्वच्छ नहीं होती है। तो ज्ञान की चर्चा चाहिए, ऐसे व्यक्ति का संग रखो। चलते फिरते संसार में रहते हुए ऐसे नहीं सब कुछ छोड़ दो, ज्ञान आप चिंतन मुरली सुनते ही आप उसका चिंतन करो कि ये क्या, ये कैसे करना है, इसका अर्थ क्या है। तो ये सोच करके अगर कोई मिला उनके साथ बात करो, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, ये ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे करने से ऐसा होता है, वो भी अपना विचार बताता है। तो ये ज्ञान की लेन देन ही हमारा समय, श्वास, संकल्प कहने में आता है, ये श्रेष्ठ बनाता है, बुद्धि को दिव्य बनाता है। ये ऐसी पढ़ाई है, कोई मनुष्य कोई शास्त्रों से कोई किताबों से कहीं से ये ज्ञान नहीं आया, ये कोई मनुष्य आत्मा ये ज्ञान दे नहीं सकता है। तो एक ही है ज्ञान का सागर का, और कल्प में एक ही दफा आता है, परम धाम से आकर ये ज्ञान देता है और अनेक जन्मों के लिए तकदीर बनाता है, भाग्य बनाता है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है। ऐसे अपने बोलने के शब्द नहीं है, अपने आप पद्मातम नहीं बनते हो आप। तो आज की मुरली का एक पॉइंट अगर ये बाजू वाला भाई को आपने सुना दिया, ये क्या किया आपने, ज्ञान दान दिया, ये अविनाशी है। ये ज्ञान अगर आपने पैसा दिया, खाना दिया, शाम को भूख लग जाएंगी, पैसे भी खत्म हो जाएंगे, ये ज्ञान कोई चोरी करके ले जा नहीं सकता है, अविनाशी है ये। तो अविनाशी ज्ञान का दान करो। किसी ने इनको करोड़पति बनाया और इनको गरीब बनाया, दोनों काम करते हैं, अंतर क्या है? ऊपर से धन आया, इनको शिव बाबा ने ऊपर से धन भेजा, सोना दिया, क्या दिया? वो भी कर्म करता है, वो भी कर्म करता है, पसीना पसीना हो जाता है, खाने का जितना थे उतना कमाता है, और एक एसी कमरे में बैठता है, कैसे बैठता है? दोनों कर्म करता है। तब बाबा ने कहा, मैं बच्चों का तकदीर बनाने आया हूं, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बनाने के लिए आया हूं, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आया हूं। एक बूंद कोई भी मिला, जितने लोगों को उसके बाबा ने व्यवस्था बताया, अगर आज के मुरली के पॉइंट एक व्यक्ति को सुनाते हो, एक जन्म के लिए धनवान बनते हो अपने आप नहीं। ये ज्ञान अविनाशी है, ये अविनाशी बीज आपने बोया, ऐसा कल्प वृक्ष तैयार होता है, सारे कल्प आपको कभी मांगना नहीं पड़ेगा, दाता बनते जाएंगे। ये दैवी गुण है, ये धारण करना है कि मुझे देना है। सवेरे मुरली सुनी, गुलजार दादी बोलती थी, हमने देखा शुरू शुरू में सब दादियां होते थे मधुबन में, तो गुलजार दादी एक दिन क्लास किया और दादी ने कहा, खुश रहो खुशी बांटो। हम क्लास करके बाहर आया, हमने कहा दादी ने तो कुछ दिया नहीं, अगर मुझे कोई मिला मैं क्या बांटू, क्या दे दूं उसको, उसको खुशी हो जाए। तो सोचता रह गया, दादी ने तो कुछ दिया नहीं। फिर याद आया कि सवेरे ज्ञान सागर बाबा ने मुरली दिया था, ये अविनाशी खजाने, ये हीरे है, वो दिया था। अगर वो आपके साथ है, कोई भी सामने आया, तुरंत उसको बताओ, आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, उसका चेहरा देख लो आप, खुश हो जाता है, मैंने भी मुरली सुनी, मुझे याद नहीं, इनको याद है, और आपको लगता है मैंने कुछ सेवा किया। ये है खजाने जमा करने का तरीका, ये है चलते फिरते खुश रहने का तरीका। आज देखो भारत विश्व के ग्लोब पर कौन बैठा है, श्री कृष्ण कैसा बैठा है, तलवार बंदूक लेके बैठा है, मुरली लेके बैठा है, कितना प्रसन्न है। हम चित्र देखते हैं तो क्या, चित्र देखकर उनका चरित्र भी अपने आप को भी याद दिलाओ कि मुझे भी ऐसा बनना है। सिर्फ फोटो निकालने से, फोटो रखने से कुछ नहीं होगा ना, मुझे भी वो कैसे रहा, क्या करता है, कौन सी मुरली है वो, बाबा वही सिखाता है। आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में श्री कृष्ण जैसे उस दुनिया में जाने के लायक ऐसा बना रहे। एक मुरली के पॉइंट लेकर अगर सारा दिन में रहते हो, आपका चेहरा प्रसन्न रहता है, किसी को सुनाओ उसको भी खुश, आप भी खुश। तो ज्ञान दान करता वही कर सकता है जो 2400 घंटे मोबाइल लेके बैठेगा, चलते फिरते 24 एक एक स्टाइल हो गया अभी, हाथ में मोबाइल एक नहीं दो दो चाहिए, एक भी नहीं दो दो चाहिए, दो दो मोबाइल हाथ लेके चलना ये भी एक पर्सनालिटी समझते हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल पर्सनालिटी नहीं, ये दुनिया का व्यवहार है। दुनिया जैसे बनना चाहते हो तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है, कोई नहीं, बाबा भी नहीं रोकता है, क्योंकि बाबा को पता है ये चारों प्रकार के बच्चे चाहिए जो श्रीमत पर यथार्थ चलकर दुनिया को नहीं देखता। आज बाबा ने कहा ये दुनिया विनाश होने वाली है, अपने को इससे न्यारा करो, अलग करो, हम अलग है। तब का हम फरिश्ते कहते हैं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, हम देवता बनने वाले कहते हैं, हम दुनिया को फॉलो नहीं करते हैं, उनके आचरण उनका व्यवहार नहीं, हमारा अलग ही। तो वो व्यवहार ऐसे हो, कोई मिले, कोई अज्ञानी भी हो, कहीं भी जाते हो ट्रेन पर, कहीं भी मिले अज्ञानी को भी आप शुभ विचार दे सकते हो। मुरली नहीं बताओ, बाबा के ज्ञान करके नहीं बताओ, तो कहो आज मैंने किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात थी। किसी न किसी रूप से आप ये शुभ समाचार, शुभ विचार सुनाने की आदत डालो। यहां युद्ध हुआ, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, आप देख लो 24 घंटे में इधर उधर की बातों के अलावा कोई एक व्यक्ति भी ज्ञान का दान नहीं करता है। क्यों? बुद्धि में वो धारणा ही नहीं है। तो आप सोचो कितनी मेहनत करके आते हो, नौकरी से, मेहनत का संसार से, तो कुछ करो, बहुत कुछ नहीं कहा 2400 घंटों ऐसे में रहो, नहीं, सब कर्म करो, जो जो करते हो कर्म संन्यास नहीं कहा, घर का संन्यास नहीं करो कहा, परिवार का संन्यास नहीं करो कहा, ये परिवार में रहते हुए भी अपने जीवन को ऐसा दिव्य श्रेष्ठ बना सकते हो। और वो बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, सारी मुरली, अव्यक्त मुरली चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बार बार यूट्यूब पर जाओ, इन एक क्लास सुनना चाहिए, जरूरत नहीं। अभी इधर आए हो, कितने क्लास सुने आपने, उनमें से बाबा की भी मुरली सुनी, एक ही बूंद ले लो, सारे क्लास से एक बूंद ले लो, एक एक बूंद लेकर दो चार दिन में अगर आप जाते हो, समय है, ट्रेन में जाते हो, इधर भी समय है, तो एक एक बूंद का विचार करो, आपस में जब भी मिले लेन देन करो, इसमें कोई तकलीफ है तो बताओ, किसी को भी कोई तकलीफ है इसमें, कोई आए तो हाथ उठाओ, भाई जी ये कहने में सहता ये नहीं हो सकता है। हां, उनके लिए जिनका जीवन का लक्ष्य नहीं है, मुझे ऐसे देवता बनना है, वो समझते हैं अभी बहुत अच्छा है, कार भी है, मोबाइल भी है, खाना भी है, सब कुछ है, बस उसी में संतुष्ट। हां, ऐसे भी लोग हैं, नहीं ऐसा नहीं, जो सब कुछ चाहिए दुनिया, साइंस ने बहुत कुछ दिया, तो वर्तमान संतुष्ट, लेकिन पता होना चाहिए जब परिस्थिति आती है, बीमारी आती है, कुछ संसार घर में परिवार में ऐसा कुछ होता है, तब पता चलता है। एक मैंने देखा, प्रैक्टिकल सुना, जब गुजरात में कच्छ में तरफ भूकंप हो गया, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, सिंधी दादा था, उनके बहुत कपड़े के बड़े बड़े दुकान थे, तो सेंटर की बहन हर साल उनके पास जाती थी राखी बांधने के लिए। वो कहता मेरे पास समय नहीं, आप नहीं बांधो, आप नहीं आओ, मेरा समय व्यर्थ करते हो आप, भी बहुत बिजी है, 5-6 दुकान थे उनके कपड़े के, बहुत बड़ा सिंधी दादा था, बुजुर्ग, तो नहीं बांधता था, तो भी बहन जी जाती थी नियमानुसार राखी बांधने के लिए। एक दफा भूकंप पे ऐसा हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, इतना भी नहीं, उसका भी एक पाव कट गया, और जीवित है, जी भी नहीं सकता, मर भी नहीं सकता, लेकिन बहन सेंटर वहां की, तो सबको खाना कंबल पैकेट ऐसा बना के दे रही थी, तो उसने दादा ने देखा, ये बहन जी जब आती थी हम मना क्या करता था, नहीं आऊं, आज उनके हाथ सामने मैं कैसे जाऊं, छुपने लगा। तो जब बहन जी सबको दे देती, वो छुपने लगा, तो बहन जी को पता चला, दादा को हर्जा नहीं, आपका अच्छा दिन भी आएंगे, बाबा आपके साथ है, मदद करेगा, तो समझा कर उसको दिया, तब उसको आंखों से आंसू आए, क्या कर सकते हैं, मनुष्य को समय बाबा भी सिखाता है, अहम आता है, अहम कहने से नहीं, रोब आता है, धन है मेरे पास, कार है, ये है वो है, दो चार मोबाइल है, सब कुछ है, क्या करेंगे। और गलत तरीके से अगर कमाते हो वो आपको खाना नहीं देगा, खा नहीं सकेंगे। वो भी बताता हूं, हमने देखा एक जगह पर सोने की थाली में खाना दे रहे थे, नाश्ता खा रहे थे हम, तो हमने कहा दादा आप भी बैठो। कहते तो मेरी तकदीर में कहां है, हमने कहा आपके तकदीर में नहीं है तो मुझे कैसे खिलाते हो, आपके पास है तब खिलाते हो, आओ बैठो मैं चम्मच से खिलाता हूं। आता हूं, गया इंजेक्शन लगा के आया, आधा चम्मच भी नहीं खाया। क्यों, भगवान ने नहीं दिया, क्यों नहीं खा रहा है, सब कुछ दिया क्यों नहीं खाता है। क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है, पुण्य की कमाई, सच्ची कमाई, सच्चे दिल से किया हुआ कमाई, खास वो सुख देता है। और गलत किसी को लूट कर, किसी को दुख देकर, किसी को परेशान करके, उसको कहते खून चूसना। तो वो कमाई जो आपने किया वो आपको खाना नहीं देता है। ये ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है, जैसा कर्म वैसा फलम कहते हैं। तो कर्म करते समय होश नहीं रहता है, बेहोश रहता है। इसलिए कहा कैसे होश में रहे, कुछ भी नहीं, एक बूंद लिख, मुरली का पॉइंट लिख के रखो, लिख के रख। इसी को रामायण में भी कहा, राम श्री राम एक दफा वनवास में अकेले हो जाता है, लक्ष्मण सीता को ढूंढने गया, अकेले हो जाता है, तो खरभूषण राम के ऊपर हावी हो जाते हैं, सब अस्त्र खत्म हो जाते हैं। तब एकदम आकाशवाणी होती है, हे राम आपके पास ये अस्त्र है, ये आप और हम सबकी यादगार है। वो अस्त्र छोड़ते ही सब मूर्छित हो जाते हैं। तो ये हमारी यादगार है, बाबा मुरली नहीं सुनाएगा आपको, संसार में जब समस्या आई उस समय मुरली नहीं सुनाएगा, टचिंग देता है, करंट देता है, अंदर रिकॉर्डेड मुरली है, आपने एक एक बूंद जमा किया है। श्री राम को भी जब वनवास में गए कुछ लेके नहीं गया था, साधु संतों ने उनको ऐसे वरदान दिया है, अस्त्र शस्त्र दिया। एक संकल्प करते ही वो अस्त्र तैयार होता है, ये ज्ञान है, यही वरदान है, यही मुरली है। ये मुरली के पॉइंट रोज एक एक बूंद अगर आप जमा करते रहते हो, किसी समय कोई भी परिस्थिति आ सकती है, उस समय आपके पास कुछ भी नहीं है, क्या करो, अभी तुरंत बाबा टचिंग देता है, क्यों, ज्ञान का खजाना भरा हुआ है, अस्त्र शस्त्र है ये भरे हुए है, तो बाबा करंट देता है, टचिंग कहा, तुरंत याद आता, अरे ये काम करना चाहिए, तुरंत वो करते हो उस विघन से मुक्त। बाबा मेरा, बाबा निर्विघन है, बाबा मेरा जो, मैं निर्विघन आत्मा हूं, अपने आप नहीं होंगे निर्विघन, सिर्फ अपने आप को पढ़ाने से नहीं, मैं निर्विघन हूं, मैं निर्विघन हूं, नहीं, कुछ कर निर्विघन के लिए विघन आते हैं, उसको पार करने के लिए, उस परिस्थिति में विजयी बनने के लिए वो अस्त्र और शस्त्र काम में आते हैं, ये ज्ञान की शक्ति काम में आती है। तो एक ही बूंद, हम आपको ऐसे नहीं कह रहे कि बहुत कुछ सारे मुरली ध्यान में रखो, रिकॉर्ड करके रखो, अंदर लिखते जाओ, नहीं, आज की जमाना ऐसा है, मुरली मोबाइल में समय जाता है, काम में दो रोटी कमाने के लिए भी 8-10 घंटे चाहिए, समय बहुत कम है, और हर एक व्यक्ति बहुत बिजी है, फिर भी निश्चय बुद्धि विजयंती कहा, जिसको निश्चय है वो एक बूंद एक पॉइंट नोट करता है, वो भी आपके इच्छा के अनुसार। ऐसे नहीं वरदान ही लेना चाहिए, स्लोगन ही लेना चाहिए, यही लेना चाहिए, नहीं, वो इतने बड़े बड़े चीज हम नहीं कर सकते, कोई अर्जा नहीं, आपके लक्ष्य के अनुसार नया हो, वही भी नहीं, बाबा को याद करो, बाबा को याद करो, एक ही नहीं, तो कोई भी नए पॉइंट जो बाबा ने सुनाया, जो आज लगा सारे मुरली ध्यान से, अपने आप आपका देखो मुरली पर भी आपका ध्यान जाएगा, इधर उधर नहीं देखेंगे मुरली क्लास में बैठे, क्यों, आज सारी मुरली में बाबा क्या नया देगा, ये आपके अंदर है कि मुझे नया पॉइंट नोट करना है, औरों को नया पॉइंट सुनाना है, दान करना है, तो सारे मुरली के अंदर अपने आप नेचुरली आपका ध्यान जाएगा, इधर उधर भी नहीं देखेंगे। इसको कहा बहुत ध्यान से सुन रहे हो, एकाग्रता अपने आप आएंगे। कुछ चाहिए क्योंकि एक व्यवस्था है, डिमांड एंड सप्लाई। अभी क्या हो रहा है, हमको किसी को सुनाना नहीं है, सुनना है बस, इसलिए हम नोट नहीं करते हैं। दूसरों को देना है, ये अगर हो मुझे मुरली क्लास जाते ही बाहर जाते ही इनको इनको ये सुनाना है, आदत डाली आपने, तो आप मुरली सुनते समय अपने आप आपका अटेंशन जाएगा और नोट भी करेंगे क्योंकि देना है। अगर देने की आदत नहीं है, हाँ सुनना है बस, भक्ति मार्ग में बैठते थे सुन रहे हम, बस सुन के आ गए, हमने आज कथा सुनी, तब कहा दवाने दो शब्द बोला दो दिन पहले मुरली में, एक नॉलेज जो भरा हुआ है अस्त्र शस्त्रों से, और एक नॉलेजेबल, हाँ सुन रहा है, रोज नोट भी करता है, नहीं ऐसा भी नहीं, लेकिन आचरण में नहीं ला सकता है कि कर्मों में व्यवस्था में इतना बिजी, उसको कहा कर्म कॉन्शियस कहते हैं, हम कर्मों में इतना लीन हो जाते हैं तो ज्ञान कहां टपकेगा, कहां याद रहेगा, तो हमारे स्वभाव संस्कार कैसे परिवर्तन होंगे। सोच लो आप, लिखने से नहीं, बाबा मैंने आज क्रोध किया, वो लिखने से नहीं जाएगा। तब कहा सुनते ही महसूस करते हो कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या पुरुषार्थ करते ही मिटेगा, और उसी की व्यवस्था दी आपको। अगर आप 10-15 दिन नोट करके देख लो, क्रोध को मिटाने की भी ये दवा है, हर एक विकारों को मिटाने की दवा है, ये संजीवनी बूटी है। तो बार बार आप 8-10 दिन मुरली को सुंगाते हो, एक एक पॉइंट आदत डालते हो, तो क्रोध अपने आप आपको छोड़ के जाता है, आप छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हम बेहोश हो जाते हैं, तो क्रोध कुछ ना कुछ गलत शब्द निकलता है, होश में है, जागृत है। तब कहा ये ज्ञान, नॉलेज इज लाइट, ये रोशनी देता है आपको कि इसके व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए, इस व्यक्ति के साथ कैसे चलना चाहिए। रस्ते पर लाइट है तो खड्डा दिखाई देता है, यहां कैसे चलना चाहिए, आप खड्डे को कुछ नहीं कर सकते हो, अपने को बचाते हो, अपने को मोड़ते हो। इसके लिए बाबा ने कहा स्व परिवर्तन, अपने को परिवर्तन करो, ये ऐसा हाँ वो है, उसको ऐसे ही बनना है, क्या आप बना सकते हो। दूसरों को परिवर्तन करना है, इनको ये करना नहीं, मुझे करना है। और हम भी किसी को ज्ञान के पॉइंट इसलिए सुनाते हैं उनके लिए नहीं, मेरा भाग्य बन जाए, मेरे अंदर संस्कार बन जाए, मेरी बुद्धि के अंदर ये धारणा हो जाए, ऐसे नहीं उनको उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो ध्यान भी नहीं देते हैं। तो भी आपने सुना दिया, आपका कल्याण, आपकी कमाई। तब का स्वयं को अपने आप को चार्ज करो, अपने आप के अंदर ज्ञान के खजाने भरो, स्वयं को जागृत रखो। तो ये स्व पुरुषार्थ है जो बाबा ने कहा कि अगर आप अव्यक्त मुरली में परसों कहा व्यर्थ को समाप्त करो, कैसे करेंगे, जिसके बुद्धि में ज्ञान नहीं तो बोलेंगे तो जरूर, खाली चुप कोई नहीं रहता है। आज बाबा ने कहा मुरली में एकांत, एकांत में रहो, एकांत में बैठ के क्या करेंगे, खाली बैठेंगे, मोबाइल और कुछ, माया ने बहुत कुछ साधन दिया है। और अंतर्मुख कहा, जिसके अंदर एक बूंद के दो मुख है, एक बाहर मुख बोलते रहना, एक अंदर बुद्धि, बुद्धि मंथन करती है। आज बाबा ने कहा व्यर्थ मैं कैसे मिटाओ, व्यर्थ मिटाने के लिए क्या करो, मेरा समय मेरा श्वास संकल्प कहां मैं व्यतीत करो, प्लानिंग बनाता है, मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। ऐसे नहीं कहा कि कुछ भी नहीं करो, खाना नहीं बनाओ, सेवा नहीं करो, नहीं, उससे और व्यर्थ चलेगा, आइडल माइंड इट डेविल्स वर्कशॉप का। तो उसके लिए भी अगर आपका समय बिजी रखना चाहते हो, और भी तरीके बहुत है, तो क्या करो, आज की दुनिया में आपको बाबा साइंस ने मोबाइल दिया, उसका यूज करो पुरुषार्थ में।
तो मुरली आज को एक बाबा ने ये व्यवस्था भी बता के था, पहले दिन ही मुरली मोबाइल में आती है, रात को डाउनलोड करके रखो, सवेरे स्नान करने जाते हो, आधा घंटा आप खाली है, कोई काम नहीं, उधर स्नान करना है, शरीर को धोना है, मन बुद्धि को खाली है, मोबाइल है, मुरली डाउनलोड करके रखा, बाथरूम में कपड़े ले जाते हो ऐसे मोबाइल भी ले जाओ, एक प्लास्टिक की थैली रखो, उसके अंदर मोबाइल डालो, ऑन करके मुरली सुनते सुनते स्नान करो। तो मन बुद्धि में सारा समय नहीं जाएगा, एक कोई भी मुरली के पॉइंट अंदर जाएगा, उसका तीर लगेगा, टचिंग होंगे, अरे ये क्या, ये कैसे करो, आधा घंटा आपको से कर्म करना है, कर्म छोड़ दे सकते हो। दूसरा, माताएं खाना बनाती, बाबा कहता है बाबा की याद में खाना बनाओ, आप पूछो, साक्षी होकर अपने आप से पूछ लो दिल से कि खाना बनाते समय कोई व्यर्थ विकल्प नहीं आया, ऐसा हो सकता है, क्या क्या भरा हुआ है, बाबा तो कहता है योगयुक्त खाना बनाओ, हो सकता है उसकी युक्ति चाहिए, उसका क्या करना चाहिए इसके लिए। मोबाइल है, ऑन करो, थोड़ा गैस से दूर रखना, नजदीक नहीं रखना, इधर उधर के कुछ सुनने के बदले मुरली बार बार सुनो, मुरली ऑन करो, रखो, सुनते सुनते खाना बनाओ, कुछ सारा समय नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ पॉइंट तो जाएगा, जो हमारे मन में अच्छे विचार आ जाए, ऐसा कोई मन जीत नहीं है, बुद्धि के अंदर ऐसे संस्कार भरे हुए हैं, जो बुद्धि के अंदर अच्छे अच्छे विचार आ जाए संभव नहीं है, तब इसको घोर कलयुग कहा। उसका निवारण बाबा बताता है, बच्चे साइंस ने साधन दिया उसको भी काम में लगाओ, मुरली ऑन करके रखो, सुनते सुनते खाना बनाओ, वॉकिंग चाहते घर से सेंटर तक आते हो 15 मिनट आधा घंटा लगता है, मुरली ऑन करके सुनते सुनते कान में नहीं तो खाली है, इधर उधर देखते रहेंगे क्या मिलेगा, दिखाई देगा गंदगी है, ऐसी दुनिया है, वो अंदर जाएगा तो उसका विचार चलेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसे नहीं देखते हुए नहीं देखो, इतनी हमारी ताकत नहीं है हम, तो उसका निवारण क्या है। तो मोबाइल आने गीत सुन रहे हो इधर उधर के, वो किसने गाया, फिल्मी दूसरों का ज्ञान हम क्या सुनेंगे, सुन के क्या फायदा, तब का कृष्ण के हाथ में मुरली दिया है और कुछ नहीं दिखाया, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं दिखाया, मुरली, तब प्रसन्न है। तो अगर हमारा जीवन में वो प्रसन्नता वो खुशी सदा रहे तो उसका तरीका है, स्नान करते खाना खाते सोने जाते हो, आज की दुनिया में जाओ तुरंत नींद आ गई, ऐसा बहुत कोटों में कोई होगा, तुरंत नींद नहीं आती है, हाँ परिस्थिति ऐसी है, तो मुरली ऑन करो, मोबाइल रखो दूर, सुनते सुनते सो गए अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे बच्चों को देखो, माताजी कहानी सुनाती है, ज्ञान कुछ सुनाते सुनाते सुलाती है, तो मुरली सुनते सुनते सो गए, कहाँ हम, अब ये ज्ञान एक ऐसी शक्ति है, अपने समय श्वास संकल्प 100% नहीं, 5%, 10%, 20%, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सारा समय करो पूरा होना चाहिए, नहीं हो सकता। बाबा ने आज एक व्यवस्था बताया, क्या बताया याद है, इसी के लिए क्या बताया, कल भी कहा, कल कहा क्या कहा, हाँ 90% कुछ हो बाबा 10% आपको मांस देगा, मदद करेगा, तो आपके तो पूरा होना चाहिए, संभव नहीं, हमारे पुरुषार्थ से हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तब का हिम्मत रखो, अलग अलग तरीके ढूंढो, हमारा समय मन में व्यर्थ विचार नहीं, अभी मनसा सेवा सुनते हो, शुभ भावना रोज सुनते हो, साक्षी होके पूछो, अगर इस भाई को सामने आते हुए देखा क्या आपके मन में ये विचार आएगा, शिव बाबा ये भी परमधाम में था, ये भी सत्युग में जाने वाला देवता है, ये शुभ विचार आएगा। किसी बाबा के बच्चे को देखा, बैच पहना है, सफेद कपड़े पहने, उनको देखते आपके अंदर विचार आएगा कि इसको मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए, ये बाबा का बच्चा है, ये है शुभ भावना। शुभ भावना शब्द बोलते हैं, मनसा सेवा कहते हैं हम, क्या चीज है वो मुझे चेकिंग करना है, उधर से इधर आने तक 5-10 लोग मिले, उनको देखकर मेरे अंदर क्या विचार आया, मुझे चेकिंग करना, ये चेकिंग करने के, और क्या करना चाहिए वो करना चाहिए। अगर बाबा का बच्चा दिखाई दिया, बैच पहना है, सफेद कपड़े है, भाई जी ओम शांति, हाँ बुद्धि में है, दान करो, ये देवताओं के संस्कार है, बाबा हमको देवता बना रहा है। उसको देखते भाई जी आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, वो भी किसी विचार में जा रहा था, आपने उनको इधर अचित दान ऐसे बीज बोया, ये है मनसा सेवा करो। अलग अलग तरीके बताता है बाबा, उसको हम 100% करना चाहे नहीं होगा, 10 में से 2 होगा, 3 लोगों को होगा। हाँ वो ने मुख से मुरली नहीं सुनाया तो उनको देखकर मन में हमें ये करना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं होगा, इसके अंदर ये संस्कार नहीं है कि हम औरों को देखते मेरे मन में अच्छे विचार आ जाए, शुभ भावना आ जाए, संस्कार आदत नहीं है। तो संगम पर ये आदत डालते हो तब का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, ये आदत डालते हो तब जाकर के सत्युग में देवता देने के आदेव, जड़ मूत्री से भी उनको देखते आपको लगा देवी मुझे कुछ दे रही है, ये देवता मुझे कुछ दे रहा है, क्योंकि आपके अंदर देने का संस्कार है। उस मूर्ति को भी देखते आप उनको भी वही फीलिंग आती है, क्योंकि आपने यहां आप प्रैक्टिकल किया हुआ है। तप का कर्म ऐसे यादगार बनाओ, तो ऐसी व्यवस्था है कि ज्ञान स्वरूप, ज्ञान की धारणा। हाँ इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल यूज ही नहीं करो, 2 नहीं 4 रखो, कोई फोन किया यूज करो, लेकिन ये भी साथ में कर सकते हैं ना। कहां कहां समय हमारा खाली जा रहा है, हाँ बिजनेस में, व्यवहार में, कंप्यूटर में बैठे हो, वहां मैं नहीं कहता वो काम छोड़ो और ये करो, नहीं वो भी करना है, जब तक शरीर है तो उसके लिए कुछ काम करना है, और 2400 घंटे नहीं का वो काम छोड़ना भी नहीं है, करते हुए करो, तब जाके हमारे बोल, हमारे विचार, हमारे आचरण अपने आप शीतल, मधुर, नम्र, निर्माण, जो कहता ब्रह्मा बाबा सिंपल था, कुछ बाबा ने शो नहीं किया कहीं भी अपने को, आज बाबा ने कहा पहले आप ब्रह्मा बाबा को देख लो, कहीं भी आप चित्र देखो, बाबा के गले में हार, कोई गुलदस्ता दिया, देखा कहीं भी चित्र है नहीं, कहीं भी अपने को नहीं रखा आगे, बच्चों को रखा, हर जगह पर बच्चे आप अपने को छुपाया, गीत सुनते हो तो वो बाबा ने आज कहा मैं, अगर कोई लाइन में खड़े हैं तो क्या करेंगे आप बताओ, पहले मैं उसको पीछे कर, गाड़ी लेके चलते हो पहले मुझे ओवरटेक करना है तो उसको पीछे करके पहले मैं जाऊं, ये दैवी गुण बाबा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाता है, यहां वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, ये पढ़ाई के अंदर ईश्वरीय पढ़ाई है, मनुष्य नहीं पढ़ाता है, शिव बाबा के ऐसे पढ़ाता है, हमारे जीवन में ऐसे दैवी गुण धारण कराता है। अगर सुन करके भी किसी ने नहीं किया तो जबरदस्ती करेगा धारण होगा, स्कूल में तो सभी बच्चे जाते हैं, सभी फर्स्ट क्लास नहीं आते, सभी पास नहीं होते, फेल भी होते हैं, क्यों, उनका लक्ष्य नहीं है। तब का लक्ष्य से लक्षण आचरण दिखाई देता है, तो इसलिए आए हो मधुबन में शांतिवन, बाबा ने देखो इतना बड़ा डायमंड हॉल, शिव जयंती, शिव बाबा क्यों आया है सुनाते हो, तो अपने अंदर भी देखना चाहिए अपने आप को, वो मुरली से होता है, अगर मुरली आप 1-2-3 दिन नहीं सुनो कुछ पता नहीं चलेगा, ये ज्ञान महसूस कराता है, इतना ही, अगर मुरली सुनते हो ध्यान से तो महसूस कराने की ताकत इस मुरली में है, रियलाइज कराने की ताकत है, ऐसे ज्ञान है जिसको कहा नॉलेज इज पावर, ये रोशनी लाइट है, दिखाता आपको ये रास्ता ठीक नहीं है, ये खड्डा है, इस व्यक्ति से कैसे मिलना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सिखाता है। फिर उसके बाद आपका नंबरवार पुरुष ताकत के अनुसार, लक्ष्य के अनुसार, कोई राजा बनना चाहता है, कोई कहता है नहीं सेवा करना ठीक है, सेवा में बिजी, ऑर्डिनरी प्रजा बन गया तो चलेगा, तब बाबा कहता है मैं प्रजा योग सिखाने नहीं आया, राज योग सिखाने आया। तो बच्चे बाबा को राजा थोड़े चाहिए, बहुत नहीं, प्रजा तो ढेर आएंगे। तब कहा कि अपने को ऐसा लक्ष्य रखो, उसके लिए आपको सब कुछ छोड़ना है, ये नहीं करना है। हमारे जीवन में एक ऐसा हो गया, स्थूल चीज है, ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, स्थूल नहीं, सूक्ष्म धारण करो, दवाई ले लो, अपने आप आपको रोकेगा कि ये नहीं देखना है। मुरली की धारणा है, कौन रोकेगा आपको? ये मुरली, ये बुद्धि के अंदर ज्ञान है, वो कहेंगे इधर नहीं देखना, ये शब्द नहीं बोलना, ये नहीं खाना, कौन रोकेगा? अरे ये नहीं खाना चाहिए आपको, कौन रोकेगा मुझको? मन मनुष्य इतना गुलाम हो गया है, हम मनुष्य सबके गुलाम हो गए, कौन रोकेगा? जिसके बुद्धि में या ज्ञान की बूंद है वो हमें परिवर्तन करेगा, वो रोकेगा। तब कहा नॉलेज इज लाइट, वो रास्ता दिखाता है, खड्डे में हम नहीं जाएंगे, ये खड्डा दिखाई देता है, अपने को बचाएंगे, अपने को मोड़ेंगे। तो ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं है, नहीं तो दुर्गति। कल भी गुस्सा कर रहे थे, आज भी गुस्सा कर रहे हो, तो मुरली सुनकर क्या फायदा? कल भी ऐसे कर्म करते थे, आज भी कर रहे हो, क्या अंतर क्या हुआ? क्या किया सुनकर? अपने आप से पूछना चाहिए, ये सेल्फ रियलाइजेशन है। ये महसूस करने के लिए बाबा हर साल देख लो सबको चांद देता है, आओ बैठो शांत होकर, इतना सुंदर वातावरण है। अभी 7 से 8 एक घंटा योग में बैठेंगे कि 5 मिनट बैठेंगे? हाँ सुना बहुत, हाँ दोनों चाहिए, ज्ञान और योग से। आज बाबा ने मुरली में कहा ज्ञान और योग ये दोनों चाहिए, सुना? अभी 1 घंटा नहीं तो हमारे अंदर एक आदत हो गया, कर्मेंद्र जीत कहा। क्या कर्मेंद्र जीतेंगे? अब भी एक जगह पर 15 मिनट स्थिर होके बैठो, चित्त प्रज्ञ कहा, इधर देखेंगे उधर देखेंगे। बंदर देखना, देखा आपने कभी बंदर बैठा तो खाली बैठेगा? हाँ, तो हम तब बाबा को कहना बंदर बुद्धि पत्थर बुद्धि, है ना? अपने आप से पूछा, अभी कोई काम नहीं किसी को, कुछ काम है तो वो पहला करो। तब बता निश्चिंत होके बैठो, प्लान करके बैठो, मुझे 8 बजे तक बैठना है। सब मोबाइल विवाद सब बंद कर, 2 काम एक साथ नहीं होता है। यहां बैठे मैं फोन भी ले लू, घर में बात भी करो और योग भी करो, आप भी डिस्टर्ब, दूसरों को भी डिस्टर्ब। आप भी बैठने, आप बोलेंगे तो दूसरों को भी लगेगा ना, और बीच में उठते हो बैठते हो, तो एक डिसिप्लिन है। ये बाबा दैवी मैनर्स दिखाता है, एक बार आके बैठे, इंद्रियों पर कम से कम ये जीत, समय अपना सफल करने के लिए आधा घंटा अपने देख लो, हम 15 मिनट बैठ सकते हैं। देखो बाबा ने बहुत अच्छी व्यवस्था करके दिया, सोफा दिया, चलिए जमीन पर बैठो। शुरू शुरू में तो जमीन पर बैठते थे, तो यहां आराम से व्यवस्थित बैठ, कहा जो आज बाबा ने मुरली में कहा। भले बच्चे, बाबा बच्चों को मेहनत करना नहीं देता है, तकलीफ नहीं देता है, सो करके भी याद करो, है ना? आज सुना है ना मुरली में, तो इसलिए यहां आराम से बैठो, आना जाना इधर देखना उधर देखना नहीं, निश्चिंत। कोई काम है तो करके आओ, इधर बैठ करके फोन से मैं बात करूं तो उधर फोन करते रहो ना, इधर नहीं आओ। ये उसके लिए साधना करने के लिए, ये साधन साधना करने का स्थान है, ये फोन से बात करने का नहीं। अगर आपको मना नहीं करता कोई भी, फोन नहीं करो, हाँ जाओ बात करो, वहां ही बाहर करो, यहां नहीं। ये पढ़ाई का स्थान है, ये कमाई करने का स्थान है, उस पुरुषार्थ करने आए हो, इसलिए ध्यान दे करके। तो नॉलेजफुल, एक ही शब्द ले लो, देखो एक शब्द के अंदर कितनी चीजें भरी हुई है। तो इसलिए अभी आधा घंटा है, यहां भी विधि बता रहा था मैं, आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है, ये ब्रह्मा कुमारी का राजयोग है और कुछ भी नहीं है। तो वो योग अग्नि का, जो बहुत जन्मों के संस्कार, वो अपने आप नहीं मिटेंगे। आप धूप में जाओ और आ जाओ, पसीना नहीं निकलेगा। 15 मिनट आधा घंटा बैठो, यहां भी अगर पुराने संस्कार मिटाना चाहते हो, योग अग्नि का आराम से बैठो। आपके के हम बैठते हैं तो शरीर का भान है नहीं, ऐसे नहीं, शरीर छोड़ के नहीं। आज बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, हर चीज बताता है। अपने को पहले शरीर के भान से बाहर लाओ, पूछो मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं, मेरा रूप एक सफेद चमकता हुआ सितारा ब्रकुटी के बीच में बैठा हूं। मेरे गुण हाँ दैवी गुण थे, आज नहीं है। ये दैवी गुण सातों गुण लाना है। कौन से गुण? एक एक गुण अपने आप को याद दिलाओ। चौथा, अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी शिव बाबा को याद करने बैठे हैं, विकर्म विनाश करना है। तो कहां है शिव बाबा? परम धाम में। उसके पास क्या है? कौन सी शक्ति है? वो पवित्रता का सागर है, वो शांति। बाबा मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है। पवित्रता के ओर बाबा ने कितने ज्ञान सुना है, एक एक पॉइंट लेके डिस्कशन करो। बाबा इसमें मैं कैसे पवित्र बनूं? देख रहे इधर, दिखाई तो नहीं देता, ऐसा नहीं देखेंगे, यहां देखते रहो। और बुद्धि की यात्रा आई है, तब का दिल से याद करो, बाबा इसमें पवित्र कैसे बनो, इसमें कैसे बनो। ये पवित्रता, अगर 15 मिनट आधा घंटा पवित्रता के ऊपर बाबा से बात करते हो, ये पवित्रता के अग्नि जलाया, ये अपवित्रता को भस्म करता है। बाबा आप शांति के सागर हो, मैं कैसे बनूं, क्या करूं मैं? एक एक शक्ति लेकर अगर आप बैठते हो, एक आ अगर कोई इधर आया गया, कहां आधा एक घंटा गया पता ही नहीं चलेगा। तो ये है लगन में मगन, व्यवस्था चाहिए। ठीक है, ऐसे अभी हम आज एक घंटा बैठेंगे, सभी बैठेंगे कि जल्दी जाना चाहते हो, किसी को भूख लगी नहीं? तो हमारे अंदर एक आदत है, इंद्रियों पर जीत नहीं है, एक जगह पर मैं टिक के बैठना है, फिर थोड़ा हट करना पड़ता है, क्योंकि अपना भाग्य बनाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, ये मेहनत है। ठीक है, ओम शांति।